राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा। आज राम विजयदशमी दशहरा बोलते हैं, बहुत बड़ा शुभ दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है। आज के 20 दिन के बाद दिवाली आती है, तो दशहरा बोलते हैं या विजयदशमी बोलते हैं, राम विजयदशमी। और आज मध्वाचार्य वैष्णव चार संप्रदाय, मध्व संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से शुरू होती है और लक्ष्मी से शुरू होती है, रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय, उसके आचार्य रामानंद है, भगवान भोलेनाथ से रुद्र से शुरू होती है रुद्र संप्रदाय, और उसके विष्णु स्वामी है, और निम्बारक आचार्य, ये संप्रदाय चार कुमारों से शुरू होती है। तो मध्वाचार्य जिसकी संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, हम सब जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो मध्व गौड़ीय वैष्णव, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। तो आज मध्वाचार्य का भी आविर्भाव दिन है, और कार्तिक महीने की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्दी। आज मानो दशमी है, तो पांच छह दिन के बाद कार्तिक महीना आरंभ होने वाला है। कार्तिक महीने का ऐसे नाम कार्तिक है, जैसे जनवरी फरवरी कहते हैं, ऐसे कार्तिक है, लेकिन आध्यात्मिक नाम उसका दामोदर महीना है, उसी महीने को दामोदर मास कहते हैं, वो उसका स्पिरिचुअल नेम है, क्योंकि उस महीने में दामोदर लीला भगवान की का दर्शन किया था गोकुलवासियों ने, और वो दिवाली के दिन ही लीला हुई थी। तो इसलिए अब ये उत्सव का महीना आ रहा है, तो उसमें गोवर्धन पूजा का भी उत्सव है, दीपावली दिवाली का भी उत्सव है, ये सब आध्यात्मिक उत्सव हैं, जिसमें हमको भगवान की कथा सुनना, लीला सुनना, कीर्तन करना, अधिक समय उसमें हमारा बिताना चाहिए। अभी दशमी है, तो इससे पहले 9 दिन गुजरे हैं, तो ये 9 दिन पहले जमाने में रामायण के ऊपर चर्चा होती थी, और 10वें दिन पे राम विजय दशमी का उत्सव मनाते थे, लेकिन अब वो परिवर्तित होकर दुर्गा पूजा में परिवर्तित हो गया। तो परसों हम कहे गए थे चित्रविया में दुर्गा पूजा के उत्सव में, कोई तो 400 आदमी थे, बहुत मंदिर भरा हुआ था, तो हम श्रीमद भागवत से दुर्गा के जो नाम भगवान श्री कृष्ण ने उनको नाम दिए, काली, भद्रकाली, चंडिका, वैष्णवी, ईशानी, ये भगवान श्री कृष्ण ने उनको नाम दिए कि इन नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तो वो भागवत को बताने के बाद हमने उनसे कहा कि वैसे इस संसार को जो जेलखाना कहा गया है, ये कारागर है, ये प्रिजन हाउस है, और माँ दुर्गा भवानी इस प्रिजन हाउस का सुपरिटेंडेंट है, इसका मालिक है, इसको चलाता है, और हम सब इस जेल के अंदर आए हैं। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, हमने उनसे पूछा कि आदमी जो जेल में हो और जेल सुपरिटेंडेंट को प्रार्थना करनी हो, तो जाके उसको क्या कहना चाहिए, कि मुझे जेल से निकाल दो, या ये कहना चाहिए जेल के अंदर मेरे को एसी लगा के दो, या मेरे को टीवी लगा के दो, क्या कहना चाहिए, आप बताओ। सबने बोला, भाई कोई भी आदमी कहेगा जेल के अंदर तो बाहर निकालो, ये थोड़ी कोई कहेगा कि जेल के अंदर टीवी दे दो और एसी दे दो। तो फिर मैंने बोला, आप सब ये पूजा की सामग्री ले आके बोलते हो कि माँ हमारा घर बना दो, हमारा दुकान चला दो, ये तो टीवी मांग रहे हैं जेल के अंदर, कोई बात तो जानना मांग नहीं रहा। तो तुम्हारे को पूजा करना तो जरूर चाहिए, लेकिन कैसा पूजा करना चाहिए ये समझ में नहीं आता। पूजा कैसा करना चाहिए ये भी तो विधान समझ में आना चाहिए ना, भाई पूजा इसलिए करना चाहिए, तो गोपियों ने भी पूजा की थी कात्यायनी देवी की, लेकिन काय के लिए की थी, कृष्ण की प्राप्ति हो, संसार के बंधन से मुक्त हो, द्वारका के अंदर भगवान जब चले गए थे समंतक मणि को ढूंढने के लिए, तो पीछे भगवान तो 27 दिन नहीं आए, 27 डेज लग गए, तो पीछे वसुदेव देवकी आदि ने भी देवी की पूजा की थी कि कृष्ण वापस आए, उन्होंने भी पूजा की थी, तो पूजा करना मना नहीं है, लेकिन कैसे और क्यों पूजा करनी चाहिए वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो ये उत्सव अभी 9 दिन बहुत उत्सव के साथ लोगों ने इसको मनाया, लेकिन उत्सव ही करके मनाया, उसके पीछे जो रहस्य है उसको समझा नहीं। एक बार प्रभुपाद जी, बहुत पुरानी बात है, जब कलकत्ता में रहते थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तो उनके भतीजा मतलब गुरु भाई का शिष्य, वो उनके पास आता था, वो ब्रह्मचारी था, प्रभुपाद प्रचार में जाते थे, तो क्योंकि उसके लाल कपड़े होते थे उसको ऊपर बिठाते थे, वो बोलता मुझे कुछ आता नहीं, बोला तुम बैठो, सिर्फ लोगों लाल कपड़े का सम्मान करते हैं, और प्रवचन प्रभुपाद जी करते थे। तो वो कहता है, एक दिन मैंने प्रभुपाद से पूछा कि कलकत्ता में प्रचार करते हैं, लोग कहते हैं कलकत्ता में तो काली पूजा होती है, कलकत्ता में बहुत बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा का होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है, अभी छुट्टी होती 10 दिन, तो बोले लोग कहते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, दुर्गा की भक्ति करो। तो उसने आके पूछा अब गोस्वामी ने, तो प्रभुपाद ने हंसते हंसते मजाक में कहा, उनको बोलो कि तुम अगर कृष्ण की पूजा करोगे तो तेरे को दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, रसमलाई मिलेगी, संदेश मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, क्योंकि उसके पास गाय है, और तुम दुर्गा के पास जाओगे तो मुंडियां कटी हुई मिलेगी, बकरे कटे हुए मिलेंगे, भूत मिलेंगे, अब तुमको कहां जाना है बोलो, तुम भूतों के बीच में जाना चाहते हो कि दूध दही के बीच में जाना चाहते हो, पूछ लो। प्रभुपाद ने हंसते हंसते उनको ऐसे बोला कि तुम जहां जाओगे वहां की, भाई मॉरिशस जाओगे तो चाहूंगा समुद्र मिलेगा, तुम कहोगे नहीं हमको समुद्र नहीं चाहिए, काम तो नहीं चलेगा। तो बोला आपकी मर्जी, उनसे पूछो कहां जाओगे, जहां भूत हो चारों ओर से उधर जाना पसंद करोगे, जहां यहां गायों के बीच में बांसुरी बजाता हुआ गोपाल और दूध दही और मक्खन हो वहां जाना चाहते हो। तो बोला अच्छा है। तो प्रभुपाद बड़ी बुद्धिमानी से, और प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है कि जब भी कोई देवी को मांस आदि अर्पण करता है तो वो तो वैष्णवी है, उसको हाथ नहीं लगाती है, वो तो भूत पिशाच जो प्रेत उनके हैं उनको सब दे देती है, वो तो स्वयं शुद्ध भगवान का प्रसाद खाती। तो ये उनके अनुचर जो हैं भगवान शंकर के, भूत प्रेत जो हैं उनको वो सब दिया जाता है, उनके लिए होता है, तो उनका विधान है, लेकिन वो समझना भी जरूरी है। जो भी ये बात बीच में आई, लेकिन कार्तिक से शुरू होने से पहले अनिता माता जी के घर में उन्होंने आज आप सबको बुलाया है और सत्संग का आयोजन किया है। हम सोच रहे थे क्या सत्संग करें, तो आते हुए कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण कृष्ण परम पुरुष भगवान, ये दशम स्कंध श्रीमद् भागवत में हम विचार कर रहे थे आते हुए, बहुत छोटा सा प्रसंग है, और प्रसंग छोटा सा ये है कि अब हम दामोदर लीला का वर्णन करेंगे, वो भागवत का 9वां अध्याय है दशम स्कंध का, फिर दशम अध्याय में जाएंगे तो नल कुबेर और मणिगिरु का उद्धार है, और उधर नारद का गीता है, वो नारद गीता है उस अध्याय में, और नारद का गीत बड़ा अच्छा है, वो नारद के 10-15 श्लोक नारद गीता के बड़े सुंदर हैं। इस संसार के अंदर सबसे बड़ा नशा क्या है वो बताता है, सबसे बड़ा धन मद अंध, सब शराब का नशा सबसे बड़ा नहीं है, वो बोलता है अफीम बड़ा नशा नहीं है, धन का मद अंध, पैसा आ जाए और आदमी बहुत बड़ा अंधा हो जाए वो सबसे बड़ा नशा है। तो मद अंध वो कुबेर के बेटे थे, एक तो बेटे कुबेर के जो धन का मालिक है, कोषाध्यक्ष है, और दूसरे अनुचर किसके, भगवान शंकर के, अब उनको कौन रोके, एक भगवान शंकर के अनुचर और कुबेर के बेटे, तो जब धन ज्यादा आता है तो आदमी क्या करता है, शराब चाहिए, और शराब पीने के बाद क्या है, भोग विलास चाहिए, तो यही तो कर रहे थे वो, इसलिए उनको उद्धार करने के लिए नारद जी ने उनको शराब क्या दिया, शराब देने से पहले नारद जी ने गाया कि ये गाया क्यों लिखा है, कुछ गाता ही रहता है वो, नारायण बोला होगा या गोविंद गोपाल बोला होगा, लेकिन गाया क्यों बोला, ये देखने के लिए कहीं क्रोध तो नहीं आया, क्रोध में आदमी गा नहीं सकता, गुस्से में आदमी गा नहीं सकता है, वो लंबा लंबा सांस लेगा, स्वर से गा नहीं सकता है, तो नारद ने देखा गाकर, हाँ हाँ गा तो सकता हूँ मैं, इसका मतलब मुझे क्रोध नहीं है, मैं नारद देव ऋषि हूँ, ये देवताओं के पुत्र हैं, तो ये मेरे यजमान हैं, इनको सुधारना मेरा धर्म है, तो इनका इलाज क्या है, धन मद अंध का इलाज क्या है? इसका इलाज है कि इसको गरीब होना चाहिए, जब गरीब होगा तो इसको पता लगेगा कि दूसरे को दुख कैसा होता है, ये इलाज है, ये इलाज बताया, और बहुत सुंदर उसमें वर्णन है, कभी टाइम मिलेगा तो कथा करेंगे। लेकिन इसके बाद, इस लीला के बाद गोकुल में भगवान 3 साल 4 महीने केवल रहे, गोकुल के बाद वृंदावन चले आए जमुना पार करके, 3 साल 4 महीने, 3 साल की भगवान की बाल समझो के जो जो दामोदर लीला है, तब भगवान की आयु 3 साल है, फिर 1-2 महीने आपस में उन्होंने चर्चा की कि यहाँ रोज उत्पाद होते हैं, यहाँ से चलना चाहिए, ये गोष्ठी की, और सब लोग वहां से माइग्रेट करके छोड़ के गोकुल को जमुना को पार करके और वृंदावन में छतीकरा में आके रुके, ब्रज वाले इस एरिया में 3 साल 4 महीने यहाँ रहे, और फिर नंदगांव जाके आखिर में 3-4 साल 3 साल 4-5 महीने नंदगांव में रहे। तो अंतिम लीला जो गोकुल में घटी है वो है मथुरा से। ये लीला इसलिए बताने की आवश्यकता है कि भगवान के लिए किया हुआ छोटा भी काम कभी बेकार नहीं जाता है। भगवान किसी से कुछ लेता नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आत्मा राम है। कोई भगवान को कुछ दे सकता है ये संभव नहीं है। आपका है क्या जो दोगे, आपके पास क्या है जो दोगे? जब बलि महाराज से वामन देव ने सब कुछ ले लिया, तब प्रहलाद महाराज ने आकर कहा कि भगवान इसने कुछ आपको दिया नहीं है, सब आपका ही था, हम तो असुर हैं कि इसको अपना मान के बैठे होते, ये केवल इसने ये अपना मेरा है ये छोड़ा है, यही इसका बड़ाई है, नहीं तो इसका तो कुछ था नहीं, सभी आपका है, सब कुछ भगवान का है, कुछ हमारा है नहीं इस दुनिया में। कोई इस दुनिया में कुछ लेके आया है? ऐसा कोई आदमी आपने देखा है कि दुनिया में जब जन्म हुआ है तो कुछ साथ में लाया, कपड़ा भी दो, एक चड्डी भी साथ में नहीं लाता है, इतना कपड़े का टुकड़ा भी वो अपने साथ ला नहीं सकता है, और यहां से जाते हुए कुछ ले नहीं जा सकता, तो इसका मतलब उसका कुछ होता तो लाता और कुछ होता तो ले जाता, ना कुछ है, लाया नहीं है तो था नहीं, जाएगा तो कुछ ले नहीं जाएगा, तो सब कुछ भगवान का ही है, केवल ये छोड़ना मेरा है, ये छोड़ना यही त्याग है। केवल हम मेरा मान के बैठे किसी चीज को, वो मेरा है नहीं, है तो पहले से भगवान का। तो बात क्या कर रहे थे कि भगवान को देने वाला स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, भगवत गीता में भगवान कहते हैं इस रास्ते के ऊपर, भगवान की भक्ति के रास्ते के ऊपर, भगवान की सेवा के रास्ते में कोई चलता है, थोड़ा सा एक कदम भी चलता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, और बड़े से बड़े भय से बच जाता है। बड़े से बड़ा भय का मतलब मृत्यु के भय से बच जाता है। जैसे अजामिल ने अनजान में अपने बेटे के नाम नारायण होने के कारण नारायण जपा, ये अनजान में हो गया, लेकिन उसको लाभ क्या हुआ, मृत्यु का फंदा गले में डला हुआ था जमदूतों का, और ले जाने वाले थे, वो मौत के उस भय से एकदम बच गया इस छोटे से एक बार नाम लेने से, और नाम भी नहीं लिया, नाम अभास। नाम अभास का मतलब नाम की शक्ति को न जानकर जैसे मजाक में कोई बोल दे, उसका ये फल मिला कि मृत्यु जैसे, मृत्यु जमदूतों का फंदा गले में पड़ा हुआ था, उससे बच गया। इसको बोलते हैं स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से मुक्त हो गया, सिर्फ एक बार नारायण का नाम, वो भी बेटे के नाम होने के कारण उच्चारण करने से इतना उसको लाभ मिला। तो फिर जो बड़े इच्छा से और प्रेम से भगवान को कुछ अर्पण करता है, तो भगवान उसका रखता नहीं है, उसको 1000 गुना करके वापस लौटा के देता है। और फिर ये देखता है कि मेरे देने के बाद ये भोग में फंसता है या मेरी सेवा में लगाता है। अगर सेवा में लगाता है तो बेअंत देता है, भोग में फंसता है तो वापस सब ले लेता है, जो दे सकता है वो वापस ले भी सकता है। जब वो देने के ऊपर आएगा तो आपके दो हाथ में आप कितना ले पाओगे? उसके तो हजारों हाथ है, वो सहस्र बाहु है। देने को आए तो इतना देगा कि दो हाथों में से ले भी नहीं सकते। और जब वो वापस लेने को आए तो दो हाथ से कितना पकड़ोगे? उसके तो हजार हाथ है, सब कुछ ले जाएगा, कुछ पता भी नहीं लगेगा कब लेगे। तो वो देता भी है तो छपड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो कुछ भी नहीं, कोड़ी भी नहीं की पास छोड़ता है। तो दोनों काम वो पक्के करता है। तो भगवान को दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। ये कहावत है, पता नहीं आपके यहाँ तो खेती में होता नहीं है, लेकिन खेती ही जो दूसरी होती है ना, जमीन, उसमें कहते हैं भगवान के नाम दिया हुआ कभी खराब नहीं होता, वो तो हजार बार ज्यादा बढ़ता है। जैसे एक तो ये चने की खेती होती है ना, एक चना और दूसरा आपके पास ये बड़ा बीन है, ऐसे छोटे बीन आते हैं, वाइट इतना बड़ा बीन नहीं है कि पकाते हैं कभी, ऐसे छोटे छोटे बीन आते हैं, उसको चोला बोलते हैं, लोबिया, हाँ, ब्लैक आई बीन। इसकी खेत में जितने गाय बकरी जाएगा उतना उसका अन्न बढ़ेगा। ये ऐसा खेत है, वैसे और खेतों में कोई पशु को जाने नहीं देते, पशु जाएगा तो सब खराब कर देगा, लेकिन चने और ये खेत में जितना पशु घूम के आएगा उतना वो बढ़ेगा उसका अनाज। ये उदाहरण देते हैं, भगवान को दोगे तो 10 गुना बढ़ेगा, 1000 गुना बढ़ेगा। एक रुपया देगा वो आपको, हजार या लाख रुपया देंगे, ऐसे के लोग गाने के रूप में भी इसको गाते हैं। तो ये आइडिया कहां से लोगों को मिला? आखिर किसी ने ये गाना बनाया, भजन बनाया, एक दोगे 1000 मिलेंगे, ऐसा सुना है ना कभी आपने? ये कहां से उसके दिमाग में आया, ये आइडिया कहां था? वो श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि मथुरा में रहने वाली एक बिचारी ग्वालन क्या गरीब सी स्त्री थी, काम क्या करती थी, फल लेकर बेचती थी जाके गली गली में, काम फल बेचने का करती थी। यहां भी आपके मैं देखता हूं रोज गली गली में हर चौराहे पे कुछ माताजी बेचारी फल फ्रूट रख के बैठी है, लेकिन पता नहीं ज्यादा शायद हरे कृष्ण माला जपती है इसलिए बोलना मना है, वो कागज के ऊपर लिखती है 10 रुपया 12 रुपया, बोलती नहीं है क्योंकि जप करती रहती है। कागज लिखती है कि बोलने की जरूरत नहीं, लिखा होता है 12 रुपया 15 25 रुपया, बोलने का झंझट नहीं है क्योंकि बहुत काम होता है, जप करती रहती है। तो ये माता टोकरी सर के ऊपर उठाया और रोज फल बेचती थी, लेकिन किसी से एक दिन सुन लिया कि गोकुल में जाओ और वहां आपको नंदलाला के घर, नंद बाबा के घर में यशोदा का लाला, उसका दर्शन करो, बहुत सुंदर है और सब गोपियां उसका दर्शन करके आनंद लेती हैं। तो इसके मन में आया कि चलो आज गोकुल चलते हैं। जमुना पार किया और फलों की टोकरी सर के ऊपर उठाई और गोकुल की गली गली में बोल रही है, आइए फल लीजिए, आइए फल लीजिए, कोई फल ले ले, कोई फल ले ले। कृष्ण तो जान गया कि ये फल बेचने नहीं, मुझे देखने आई फल बेच। कृष्ण को तो ये पता लगता है, वो तो हृदय में परमात्मा के रूप में रहता है, और ये बात के ऊपर इतना विश्वास था श्री प्रभुपाद को कि जहाज के अंदर जाते हुए पानी के जहाज में भगवान श्री कृष्ण को ऐसे बोलते हैं जैसे सामने कृष्ण बैठा हो, बोला आप मित्र मेरे, आप मेरे मित्र हो, आप मुझे जेल ले जा रहे हो अमेरिका, आपका कोई काम होगा, लोग मेरी भाषा कैसे समझेंगे, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन आप तो परमात्मा के रूप में उनके हृदय में रहते हो ना, उनको अगर आप प्रेरणा दोगे, आप उनको इंस्पायर करोगे तो फिर वो मेरी बात समझ सकेंगे। तो प्रभुपाद को ये विश्वास था कि जो भी लोग प्रभुपाद की कथा सुनने आए उनको भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के रूप में हृदय में ऐसा शिक्षा दी कि तुम जाओ तभी आए, नहीं तो इतने सारे लोग न्यूयॉर्क में तो मिलियंस के हिसाब से लोग है, उसमें से कोई 10-20-25 चुने हुए कैसे आए? भगवान उनके हृदय में था, उनको वहां भेजा। तो ऐसे कोई अचानक कुछ नहीं होता, देयर इज नो एक्सीडेंट इन द लॉ ऑफ गॉड, भगवान के नेम में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसे कभी एक्सीडेंट हुआ है कि कभी सूरज उगा नहीं हो, कभी छुट्टी ली है सन ने, कई लीव पे कभी गया है? नहीं ना, रोज उगता है कि नहीं उगता, एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं है वहां, एवरीथिंग टाइम के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली हर चीज अपने समय पे होती है। तो जो कोई भगवान का नाम भी लेना शुरू करता है ये भी उसका भाग्य है। हमारा काम है कि लोगों को मौका देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सुन लिया, सुन लिया क्या, उसके हृदय की बात को जान गए कि ये तो मेरा दर्शन करने आई है, लेकिन फल बेचने का तो इसका बहाना है। और भगवान पहले ही कृष्ण जानते थे ये गोपियां भी ऐसे ही करती हैं, इनको बहाना चाहिए मेरे को देखने का, बात करने का, और फिर कभी माखन चोरी के बहाने घर में आती है मुझे मिलने के लिए, कभी रास्ते जाते को मुझे पकड़ लेती है, कहती है तुम्हारे को छाछ पिलाएंगे तुम नाच के दिखाओ, और वो कहती है छाछ के लिए नाचूं, हाँ भाई नाचता हूँ छाछ दे दो, अरे हमारे घर में 9 लाख गाय है इतना दही दूध है फिर भी मैं छाछ के लिए नाचूं, लेकिन हाँ नाचता हूँ, क्योंकि गोपियां प्रेम से कहती है नाचो। वो गोपी बोलती है देखो मैं काम कर रही हूँ ना, ये मेरे को सर के ऊपर रखवा दो गोबर, और फिर तेरे को मैं छाछ पिलाऊंगी, तेरे को मैं दही दे दूंगी। और कितना देगी, बोले जितने गोबर उठाओगे। तो गोपी एक बार गोबर उठाया तो बोला कैसे पता लगेगा, तो गोबर से एक लगाया, एक वो कृष्ण के ऊपर लगा दिया, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, बोला अब चार हो गए। ऐसे गोपियां आनंद लेती थी कृष्ण से। तो आज इसका भी मन में ये भाव आया और कृष्ण ने अंदर से सुना, और पुराने जमाने में पैसा ये नोट नहीं थे जो अभी आपके पास नोट है कागज के, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कागज का टुकड़ा है। पुराने जमाने में कोई चीज लेनी होती थी तो उसके लिए अन्न के दाने ले जाते थे, अन्न दो। अभी हमने अपने छोटे इस आयु में देखा है, बचपन में कोई फल वाले ऐसे कुछ जाके बाहर बैठते थे, माता जी जंगल से स्वयं लाती थी कुछ जंगल का सीजन का फल, और हम घर से थोड़ा सा मानो चावल जो भी ऐसे लेके जाते थे उसको इतना देते थे, उसके बदले में वो फल देती थी। ये तो ये अभी हमने अपने जीवन में देखा है, हमने अपने हाथों से लिया है कि थोड़ा सा घर से अन्न ले जाके देते थे और चीज वाले उनसे लेते थे और वो अन्न जाके खाते थे, ये दुनिया का नियम था। तो भगवान गोपाल घर से निकले, अब 3 साल के 2 महीने के बच्चे के हाथ में कितने दाने आएंगे, जितने दाने आए उसको ऐसे पकड़ के जा रहा था लेकिन उंगली तो सब गिर रहे थे, अब कितना बच्चा ले जा सकता है, लेकिन जा रहा था टुमक टुमक करते हुए, और हाँ पांव में पायल बंधी हुई थी और कमर में करधनी बंधी हुई थी, छपक छपक काला काला सा धागा बंधा हुआ था माँ ने, यहाँ भी काला टीका लगाया था नजर न लगे है, तो लाला को ऊपर में जूड़ा ऐसे बना हुआ था, ऊपर ऐसे बांध के रखा था। अब ये जा रहा है ठुमक ठुमक करता हुआ, ग्वालन को बोला हाँ फल फल दियो फल दियो। ग्वालन रुक के, ग्वालन तो कृष्ण को देखा तो देखती रह गई, यार तो रोज फल बेचती हूँ, रोज लोग आते हैं रोज लेते हैं, लेकिन ऐसा सुंदर तो मैंने देखा नहीं, त्रिभुवन सुंदर, ये तो क्या साक्षात जो लोग कह रहे थे मथुरा में वो तो बड़ी भाग्य की बात है मेरी। वो उसको देख रही है, कृष्ण बोलता देखो नहीं फल दो फल दो, ए ये लो लो। माता जी देखती है लो क्या है, तो आदमी कुछ नहीं, वो तो सब गिर गया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के मुंह को देख रही है और टोकरी में जो फल है उठा के ऐसे, और कृष्ण उठाया जितना उसके हाथ में आया था उतना उठाया, ऐसे पकड़ा इधर से गिरा, लेकिन माता जी और डालती रही डालती गई डालती गई। कृष्ण मुड़ के अपने घर वापस गया, उसने टोकरी को देखा नहीं, टोकरी सर के ऊपर रखा, वापस यमुना के किनारे जाने लगी मथुरा की ओर। तो टोकरी का फल तो मैंने सब दे दिया उस बालक को, ये टोकरी भारी क्यों, टोकरी में वजन पड़ा है, फल तो सब दे दिया था। तो यमुना का नाव में चढ़ने से पहले उधर उतार के बैठा, बोला है क्या देखो ये पत्थर अंदर कहां से कुछ डोई डाल के गया है क्या, फल तो सब बेच दिया था। तो कपड़ा ऐसे ऊपर करती है तो हीरे मोती अंदर पड़े, अरे कन्हैया ने हमारे साथ छल किया, हमको माया में फंसाना चाहा, लिया फल और दिया धन, और धन भी हीरे मोती ज्वाहर दिए। होता कोई आजकल का कलयुग का तो बड़ा खुश होता, बोल रोज जाएंगे इधर ही बेचने जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारी गाड़ी खड़ी करेंगे रोज जाके। लेकिन ये तो एक बार कृष्ण का दर्शन कर चुकी थी, उसके मन में आया कि आज नंदलाल ने हमको छल दिया, हमको माया देकर और हमको फंसाना चाहता है, उठा के टोकरी डाली जमुना में, ऐसे ही जमुना में डाल दी, बोला तेरा है तुम ले लो जमुना, तुम्हारी कालिंदी तेरी पत्नी के गले में डालना, मैं क्या करूं। जमुना भगवान की पत्नी है ना कालिंदी के रूप में, ये तो हमारा भाव है, कहते उसने उसमें डाला और डाल के फिर गोकुल के अंदर पागल की तरह घूम रही थी, लाला कहाँ है लाला को देखूंगी, लाला कहाँ है लाला को देखूंगी। तो सीखने की बात यह है कि भगवान को दिया हुआ लौट के बहुत बन के आएगा, लेकिन उसके भोग में लग गए तो भगवान भूल जाएगा। उसको भगवान की सेवा में लगा दोगे और फिर भगवान को ही ढूंढते रहोगे तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। देने में प्रभुपाद कहते हैं, एक बार मैं तो कुछ नहीं ले गया था, वृंदावन में बैठे हुए प्रवचन में कह रहे थे, 40 रुपया भारत का मैं लेके गया था और 10 साल के अंदर आज 40 मिलियन ट्रिलियन का प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में इस्कान के नाम से है। ऐसा कोई बिजनेसमैन दुनिया में है, ऐसा कोई बिजनेसमैन 10 साल के अंदर 40 रुपीज से 40 मिलियन अथवा 40 ट्रिलियन रुपीज का बिजनेस कर सके? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं और उन्होंने मेरे उत्साह को देखकर मेरे को बे इंतहा दिया, ही गेव मी अनलिमिटेड। लेकिन मैंने मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक पेनी भी नहीं यूज किया। ही गेव मी एवरीथिंग, उसने मेरे को सब कुछ दिया लेकिन मैंने उसको अपने भोग के लिए नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए ही इज गिविंग अनलिमिटेड बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर माय पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो आया भगवान की सेवा में लगाया तो बहुत आया, बेअंत आया, अनलिमिटेड आया। कहते कृष्ण भगवान कहते इस्कान इज बिग, आई एम स्मॉल, इस्कान इज बिग, क्योंकि कृष्ण है उसमें, वो बहुत बड़ा है, विशाल है, मैं छोटा हूं। कृष्ण वॉन्टेड दिस थिंग टू हैपन, सो इट हैपन। तो यहां ये छोटा सा इसका तो बहुत सुंदर चित्र इस्कान में छपा हुआ है। ग्वालन वो जाती है बेचने फल और फिर टोकरी में हीरा दिखाते हैं, वो हीरा दिखाते हैं लेकिन हीरा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, रखोगे तो वो सांप बन जाएगा घर में। ये धन को सांप बोलते हैं, मालूम है आपको? धन सांप की तरह है वो, तो डसता रहता है आदमी को, आदमी हमेशा के ऊपर जहर चढ़ा होता है उसका, वही पागलपन है। धन भगवान की लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी धन को लक्ष्मी बोलते हैं ना, तो लक्ष्मी तो भगवान की है ना, भगवान की पत्नी है ना, कोई उसका मालिक बनेगा तो वो धक्का देके चली जाएगी। हाँ, भगवान की पत्नी का कोई मालिक बनने का प्रयास करेगा तो कैसे ये संभव है? धन लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, वो विष्णु के पास होना चाहिए। तो लक्ष्मी आपके पास है तो अच्छा है, लेकिन उसके बच्चे बन जाओ, उसको माता बना लो और भगवान की सेवा में लगाओ तो सुखी रहोगे। भगवान देने को कोई कमी नहीं है, भगवान देने को तो बेअंत देने को तैयार है, आज भी जितना चाहिए उतना देने को तैयार है, लेकिन कोई उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए तैयार है? ये ऐसा है, आपका छोटा बच्चा है तो उसको आप 10 रुपया दोगे स्कूल जाएगा तो, ज्यादा जिद करेगा तो 50 रुपया दोगे, लेकिन जब वो 25 साल का हो जाएगा आपके काम में धंधा शुरू कर देगा तब उसको लॉकर की चाबी भी दोगे, चेकबुक के ऊपर साइनर भी बना दोगे, क्योंकि अब वो समझ रहा है कि आपकी सेवा में लगा है तो सब कुछ उसको दे देते हैं। लेकिन बच्चे को तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, आपके पास तो बहुत पड़े हैं लेकिन बच्चे को तो इतना ही देना है ना। तो जब तक हम भी बच्चे की तरफ सिर्फ भोग के लिए लेना चाहते तब उतना ही देता है जिसमें हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम सेवा में जब उनकी लगना चाहते हैं तब वो इतना देता है कि हम उसको संभाल नहीं सकते। तो जो चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं और यहां कुछ बनना चाहिए मॉरिशस में, उसको पहले तो हृदय को ऐसे पवित्र करना चाहिए जो कुछ भगवान दे वो भगवान की सेवा में लगे, तो फिर भगवान को देने के लिए कोई कमी नहीं है, भगवान के पास कुछ कमी नहीं। सहसर लक्ष्मी, प्रभुपाद ने जब एक चिट्ठी लिखी थी मंदिरों सब मंदिरों के प्रेसिडेंट को कि हमारे मंदिर में जो भी लोग दर्शन करने के लिए आए, हमारे मंदिर के अंदर 25 आदमियों का भोजन हर वक्त तैयार होना चाहिए, और प्रभुपाद ने लिखाया था भोजन में चावल होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, हलवा होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए, पकोड़ा होना चाहिए, खीर होना चाहिए, और जैसे कोई दर्शन करने के लिए आए उसको हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए कि आप भगवान का दर्शन करने आए, आइए बैठिए, प्रसाद खा के जाइए और उसको प्रसाद खिलाइए। जैसे 5-6 आदमी का प्रसाद बच जाए तो फिर दूसरा बैच प्रसाद का तैयार करो, हर आने वाले यात्री को बैठ के प्रेम से प्रसाद खिलाओ। और फिर लास्ट लाइन में लिखा था कि मत समझना कि तुम किसी को खिला रहे हो, रसोई घर जो किचन है उसकी मालिक राधा रानी है और उसकी सेवा में सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां उसकी सेवा में, मिलियंस ऑफ लक्ष्मी राधा रानी की सेवा में, तो जहां लक्ष्मियां सेवा करती हैं वहां किसी चीज की कमी कभी नहीं आएगी। लेकिन यू शुड बी सिंसियर टू फीड डिवोटीज व्हेन दे कम। हमारा तो उत्साह प्रभुपाद के लेटर से इतना बढ़ा के सबको आस्ते आस्ते खिचड़ी खिलाना शुरू कर वो भी तोल के देंगे आगे चल के, 50 ग्राम से ऊपर नहीं देंगे। हम समझते हैं हम खिला रहे हैं, ये हमारी गलती है। भगवान का है और राधा रानी दे रही है तो फिर किस चीज की कमी है। तो कृष्ण भावना में आस्ते आस्ते हमारे हृदय को पवित्र करना चाहिए कि हमारे को जो भी भगवान ने सुविधा दी है वो भगवान की सेवा में लगाएं और भगवान का स्मरण करें, भगवान से आसक्ति हमारी बढ़े। वैसे भी ये भी कहावत है, जो धन भी भगवान की सेवा में लगाता है तो मन वही जाएगा, वेयर मनी गोज माइंड गोज, ये एक रूल है भाई। मानो मैंने कहीं मंदिर में 5,000 रुपया दिया तो फिर मैं देखने जाऊंगा कि मंदिर में उन्होंने क्या किया, तो मंदिर जाऊंगा ना, तो भगवान का दर्शन होगा ना। तो जो कोई देता है भगवान के लिए तो उसको भगवान का ही याद आएगा ना हर वक्त, तो देने वाले को कैसे भी भगवान ही याद आएगा ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप शुरू की कि लोग पैसा देंगे उनको पुस्तक देंगे तो घर में पुस्तक को देखेंगे और पैसे को देखने के लिए मंदिर में आएंगे तो उनका उद्धार होगा, जाने अनजाने में उनको अज्ञात सुकृति मिल जाएगी, उनकी भक्ति अपने आप शुरू हो जाएगी। ऐसे चाहे वो हरे कृष्णा नहीं जपे फिर भी उनको लाभ मिल जाएगा। तो कैसे भी हमको जो भक्त हैं उनको बड़ी सावधानी से अपना जप ठीक तरह करना चाहिए कि हमारा हृदय पवित्र हो। ये जप हमारे हृदय को पवित्र करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को ये भगवान का परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, ये भगवान श्री नाम कृष्ण के नाम का संकीर्तन अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धोके साफ कर देता है। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव नादावा मणि भव दावा गणि महानिर्वापणम श्री कैरव चंद्रिका वितरणम। ये जैसे चंद्रमा उगता है ना, ऐसे ये भगवान साक्षात, भगवान का नाम साक्षात श्री कृष्ण है और ये जब हमारे हृदय में उदय होगा तो जो हृदय रूपी कमल है ना वो खिलेगा। रात को चंद्रमा उगता है ना तो कमुदनी खुलती है, एक सूरज देख के सूरजमुखी खुलता है, एक कमुदनी चंद्र देख के खुलती है। तो ये हमारा हृदय है वो कृष्ण नाम के चंद्र रूप का जब दर्शन होगा तो हृदय खुलेगा। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा गणि निर्वापण श्री कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम। जो विद्या है विद्या रूपी वधु है उसका ये जीवन है। वधु किसको बोलते हैं? पुत्र वधु बोलते हैं, अपने बेटे की पत्नी को पुत्र वधु बोलते हैं। वधु का मतलब जिसका पति है उसको वधु बोलते हैं, जिसका पति नहीं होता है उसको विधवा बोलते हैं। तो जो भी विद्या है उसका वो वधु कब होगी? जब भगवान श्री कृष्ण को उसमें जोड़ेंगे तो पति है, नहीं तो सारी दुनिया की विद्या ये सब विधवा के बराबर है जिसका पति नहीं। विद्यारूपी वधु का पति है ये भगवान जैसे, तभी वो वधु सुखी रह सकती है। विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये हमारा प्रतिदिन आनंद बढ़ाएगा, आनंद को रोज बढ़ाएगा। जितना भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे उतना आनंद हमारे जीवन में बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और पूर्ण रूप से इस अमृत का आस्वादन करेंगे। सर्वात्म स्नपनम, सब हमारी जो इच्छाएं हैं स्नपनम परम परिपूर्ण भगवान का ये नाम कर देगा। ये 6-7 लाभ है केवल भगवान के नाम जपने के। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, तो उत्साह के साथ करने से ये सब लाभ मिलेगा। लेकिन महाप्रभु ने कहा न धनम न जन्म न सौंदर्यम कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्म ईश्वरी भवताद भक्ति अहि तुकी। कैसे नाम जपना है? बोला जब मुझे दुनिया में धन नहीं चाहिए। अरे तो ये तो बात ठीक नहीं बोली महाप्रभु ने। हम रोज गाते हैं न धनम, और सुबह गाते हैं मंगल में शिक्षा आश्रम न धनम, बाहर निकलते सीधा धन के पीछे भागते हैं। इसको बोलते हैं, इसको असल में बोलते हैं बहुरूपिया। बहुरूपिया समझते हैं? डबल स्टैंडर्ड पर्सन। पैसा नहीं चाहिए और पैसे के पीछे भागते वेरी इंटरेस्टिंग. न धनम न जन्म, हमारे को कोई ज्यादा लोग नहीं चाहिए हमारी पूजा करें, हमारे को शिष्य ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन शिष्यों के पास पीछे भगते. अरे कहा महाप्रभु की शिक्षा को ठीक तरह समझो तो सही. न धनम न जन्म न सौंदर्यम, तो ये हरि नाम लेने वाले के मन में ये आएगा, धन चाहिए लेकिन भगवान की सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं. धन चाहिए लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे को तो दो रोटी खानी. आज तो प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, जितना आवश्यकता है उतना लेना चाहिए जो हमारे विलेज में रहे. जो हम विलेज बना रहे हैं प्रभुपाद ने कहा, उसमें बैंक बैलेंस किसी के पास रखने की आवश्यकता नहीं है. भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए पहली बात. बैंक के ऊपर क्या विश्वास करेंगे, हम जाएं पैसे हमारे उसके पास, पैसे निकालने हैं, बोला सर्वर डाउन है. अरे हमारा तो, तुम्हारा सर्वर डाउन है, हमारा घर कैसे चलेगा, अब कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो पैसा कहां से देगा. आजकल सारी बैंक कंप्यूटर के ऊपर चल रही, और कंप्यूटर का दिमाग खराब हो गया तो हमारे पैसे ही हमको नहीं मिलेंगे, तो फायदा क्या उसका. नो एक्सेस, जो जरूरत से ज्यादा रखता है उसको प्रभुपाद कहते हैं इज ए थीफ, ये चोर है. और फेथलेस पर्सन, इसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है. जब से ये लाकली लाकली और लाक आया है ना, ताले जब से आए हैं, इसका मतलब वी डोंट हैव ए फेथ ऑन एनीबॉडी, हमें को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है. इसका मतलब लोग इतने बेईमान. और सबसे ज्यादा बड़ा ताला कहां लगा होता है देखा है, भगवान के अगर आगे जो दान पेटी है उसको सबसे बड़ा भगवान के आगे जो दान पेटी है उसको बड़ा ताला लगता है. लोग वहां से भी उठा के जाते हैं, बड़े होशियारी से निकालते हैं वो, जो किसी के पास वो ऐसे डाल के निकालते हैं. पकड़े गए हैं कई बार लोगों को, निकालने का स्पेशल आइडिया सबके पास है कैसे निकालना है उसका. हरे कृष्णा, उंगली से क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं. हरे कृष्णा, जो भी हो भगवान भाग्यशाली है जिसको कृष्ण भावना अमृत संघ या इस्कान के साथ परिचय हुआ है, और जिसने अपने जीवन में जैसे घर में सुंदर सा मंदिर बना के सजा के रखा है, भगवान को घर में विराजमान किया है, जो पकता है भगवान का मानते हैं, घर का मालिक भगवान है, हम सेवक हैं, ये भावना हो जाने से ये घर मंदिर बन जाता है, तो ये वृंदावन हो गया, हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमारा यही सब कुछ यहाँ है. केवल हमारा मानसिकता कॉन्शियसनेस ऐसे बदलनी चाहिए. जहां घरों में मंदिर हुआ करते थे पहले जमाने में, अब बड़े बड़े लोगों के घर में वहां शराब के बड़े बड़े अच्छे से वो बार बना के सजा के रखे हैं. आज पहले मंदिर के सामने नाचते थे, अभी शराब पी के नाचते हैं लोग. अभी भी हो वही कुछ रहा है, मंदिर की जगह के कुछ और बंदर बिठा दिया है, लेकिन वो वैसे ही हो रहा है, लेकिन उल्टा हो गया है सारा मंदिर घर में. पहले हम तो कहते पहले यज्ञशाला हर घर में होती थी, यज्ञ होता था, गौशाला होती थी. अब यज्ञशाला गई, गौशाला गई, अब शौचालय सब घरों में, अटैच बाथरूम हो गया, यज्ञ करने की जगह भी चली गई. पहले बाथरूम बाहर होते थे और पूजा अंदर होती, अब पूजा बाहर है बाथरूम अंदर. ऐसा ऐसा उल्टा दुनिया में ये धर्म का उल्टा थे. पहले जमाने में लोग कम से कम घर से, आप ही तो नया स्ट्रक्चर में किचन और बाथरूम एक ही दीवार है. ऐसा आर्किटेक्ट कहां से ये आ गए मूर्ख. पहले किचन के साथ मंदिर होता था कि भगवान कोई देखे नहीं, सीधा भगवान को प्रसाद अर्पण करें, उसका सुगंध भी खुशबू भी उसका फ्रेग्रेंस भी दूसरा न सूंघे, पहले भगवान के पास डायरेक्ट जाए. और पकाने वाला पट्टी बांधता था नाक पे कि हम इसका पहले भोग न कर ले. तो ये सब कलयुग अपना काम कर रहा है, आपको बड़ी मेहनत के साथ भगवान के प्रचार के काम को सीरियसली लेना चाहिए और इसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए. श्री प्रभुपाद की जय. सो मध्वाचार्य का आज हमारे बहुत बड़े आचार्य, एक शंकराचार्य के बाद पहले आचार्य वैष्णव ये हुए हैं. वैष्णवपत्ति सबसे शुरू हुई है शंकराचार्य के बाद, मध्वाचार्य सबसे सीनियर पहले प्रकट हुए हैं. और मध्वाचार्य का जो पूजा, जो उनका ठाकुर जी पूजा का है वो उसको कहते हैं उड़पी कृष्ण, उड़पी कृष्ण, उड़पी उस जगह का नाम है जहाँ मध्वाचार्य का पीठ है या जहाँ उनका बड़ा आश्रम है, और ठाकुर जी वहाँ जो है उसका नाम है कृष्ण। कौन सा कृष्ण? जिसके हाथ में मंथानी है, मंथनी है, मंथनी का मतलब चर्निंग राड, वो अपने हाथ में उठाई हुई है, छोटा सा बाल रूप गोपाल का है। और वो रूप रुक्मणी ने एक बार श्री कृष्ण को कहा कि आपकी बाल लीलाएं वृंदावन में जो अद्भुत हुई थी उनका मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए बाल लुमा में ये गोपाल रूप, गोपाल रूप का हाथ में मंथनी उठाई हुई, मंथनी घर में मंथन जो दही, तो बड़ा अच्छा लगा रुक्मणी को, उसकी मूर्ति बना ली, उनके घर में पूजा में पहुंची थी। तो बहुत समय बीतने के बाद गोपी तालाब के अंदर वो मूर्ति चली गई। बड़ा गोपीचंद का टुकड़ा एक व्यापारी जहाज के अंदर ले जा रहा था केवल वेट बैलेंस करने के लिए, जहाज का जहाज उसका फंस गया उड़पी के पास। मधुआचार्य वहां बैठे हुए थे, उन्होंने उसके जहाज को धक्का देके वहां से फंसे हुए को निकाला। उसने पूछा तो आपको कुछ दूं? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान का सेवा में हूं, लेकिन तुम कहां से आ रहे हो? बोला मैं द्वारका से आ रहा हूं। बोला द्वारका से आ रहे हो तो गोपीचंद है, गोपीचंद ये जो हम लगाते हैं गोपीचंद, ये केवल एक जगह है द्वारका में, वहां से आता है, उसका नाम है गोपी तालाब। वो अभी तालाब उधर पड़ा है, उसको गोपी तालाब बोलते हैं, जहां गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ जल विहार किया था, और भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के शरीर के ऊपर जो लगा हुआ सब अंग राग था वो सब जाके नीचे बैठा है, जो गोपीचंद के रूप में अंदर से खुदाई करके निकालते हैं। तो बोला हाँ ये गोपीचंद द्वारका से मिला। बोला गोपीचंद तो वो बड़ा पत्थर गोपीचंद का बाहर दिया, उसके अंदर से ये गोपाल जी प्रकट हुए, तो बड़े भारी थे, उसको उठा के अकेला मध्वाचार्य तो भीमसेन का अवतार मानते हैं कभी पांडवों में, तो वो उसको उठा के अकेला वहां ला के स्थापित किया, जहां अभी रोज का 100 मिलियन लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सबके लिए भोजन का प्रबंध होता है। जितने भी लोग मंदिर में दर्शन आएंगे करने उड़पी में, जनरल हाल बना हुआ है, लोग बिठा के खिलाते हैं, ऐसे हमारी तरह, इसको हम बोलते हैं बफेलो, ये बफे बोलते हैं ना, बफे खड़े हुए, ये बफेलो सिंह मारो खाओ। ये वैष्णव खाने वाला सिस्टम नहीं है, बिठा के प्रेम से खिलाते हैं, ये ऊंट की तरह खड़े खड़े खाना, सिर्फ चरणामृत खड़े ले सकते हैं, बाकी कोई चीज खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। अब लोग सब कुछ खड़े हुए खाते हैं, काम ही खड़े खाने का हो गया। तो जितने लोग आते हैं सबको बिठाते हैं, चावल और रसम, उधर जो मेन चलते हैं चावल और सांबर रसम ये, और कुछ अतिथि स्पेशल होते हैं साधु महात्मा, उनके लिए अलग प्रसाद एक तरफ। तो गए जग भर के बहुत सुंदर स्वीट राइस का रात को दबा के पिया, लाया ऊपर से, और जितना चाहिए उतना लो ऐसे, और सबके लिए फ्री, कोई पैसा नहीं है, जितने लोग आते हैं उसको भोजन ये मिलता है। आज भी उड़पी में बड़ा पीठ है, और अभी तो आचार्य हैं मध्वाचार्य सारे उधर उसके पर यहां रहते हैं, वो जब बद्रीनाथ में गए तो साक्षात व्यास देव ने उनको दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि आप हमारे शास्त्रों के ऊपर अपनी टीका लिखें। तो मध्वाचार्य हमारी संप्रदाय में, मध्वाचार्य के शिष्यों में माधवेन्द्रपुरी हुए, उनके शिष्य ईश्वरपुरी हुए जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने, तो ऐसे माधवेन्द्रपुरी के माध्यम से हम गौड़ीय जो संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु की, वो मध्वाचार्य से जुड़ी हुई है। और राम विजयदशमी के आज के दिन ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि आज के दिन हनुमान ने भगवान राम को आकर समाचार दिया था कि सीता अशोक वाटिका में मैं देख के आया हूं, मिली वो अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई। तो जैसे ये सुना भगवान राम ने बड़े आनंद में मगन हो गए, बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया वहां सीता के पता लगने का, और उस उत्सव को राम विजय उत्सव कहते हैं, एक ये वर्जन है। और फिर वहां से सारी सेना लेकर भगवान श्री राम वानर सेना लेकर और लंका की तरफ प्रस्थान किया, और कहीं ये मान्यता है कि आज के दिन पे रावण को मारा था और युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो इसको विजयदशमी कहते हैं। और फिर 20 दिन का लगे भगवान को वापस अयोध्या आने में, वो जिस दिन अयोध्या भगवान वापस पहुंचे उस दिन दिवाली, उसको दिवाली का दिन कहते हैं, और विजयदशमी का मतलब रावण के ऊपर भगवान की विजय आज के दिन हुई थी। और वैदिक काल में इस दिन के ऊपर क्षत्रिय जो लोग थे वो अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे, ये अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करने का दिन है कि भगवान आज के दिन पे गए थे अपने शत्रु से लड़ने और विजय प्राप्त की थी, इसलिए आज भी पुराने जमाने के नियम से अपने घर में जो अस्त्र शस्त्र है उसकी पूजा क्षत्रिय लोग आज के दिन पे करते थे विजयदशमी के। ये क्षत्रियों का बहुत बड़ा उत्सव किसी जमाने में हुआ करता था, तो आज भगवान राम से संबंध है इसलिए हम सबको इसका भी श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, नहीं तो कीर्तन कीजिए। उड़पी गोवा, गोवा सामने सुना होगा, गोवा, गोवा से दो चार पांच घंटे का आगे रास्ता इसी कोस्टल कोस्टल समुद्र के किनारे पे है उड़पी, तो उड़पी एक पीठ है, जाके दर्शन करना चाहिए वहां कभी वो मंदिर का। वो मंदिर ऐसा है कि एक भगवान का इतना प्यारा भक्त था, उसको अंदर किसी ने जाने नहीं दिया, तो मंदिर का दरवाजा ही बदल के जहां वो बाहर निकल गया था वहां खड़ा हो गया, दरवाजा पूरा मंदिर का बदल गया। इसलिए आजकल दरवाजा बंद है, खिड़की एक है, उसके अंदर से दर्शन कराते हैं, खिड़की से जाके देखना पड़ता है, क्योंकि भगवान पता नहीं किसी भक्त के लिए फिर कहीं से बाहर दरवाजा बदल दे। तो आज उनका दर्शन का सिस्टम ऐसे है। सुंदर जगह है मैंगलोर, मैंगलोर के पास में है, नियरेस्ट एयरपोर्ट मैंगलोर है, मैंगलोर से एक डेढ़ घंटे का रास्ता है, 40-50 किलोमीटर कोस्टल रास्ते।